मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 1 जुलाई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, फिलहाल हम लोग संतोष जैसे विषय पर बात कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन। और सच पूछे तो संतोष के बारे में आज पूरे समाज के अंदर जो धारणा बनी हुई है उससे थोड़ा सा हम लोग हटकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो हटकर मैं बात कर भी रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी बात है, मैंने कोई नई खोज की है। सच पूछे तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपरा है और भारतीय संस्कृति है वह हमेशा ही संतोष की बात करती रही है और संतोष में ही वह जीवन का आधार तलाशती रही है, जीवन का आनंद तलाशती रही है, जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करती रही है। और सच पूछिए तो इसी के माध्यम से वह रचनात्मकता की भी खोज करती रही है। खोज ही नहीं करती रही है बल्कि बकायदे उसने रचा भी है। तो दोस्तों आइए इसे ही थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। मैंने कहा रचनात्मकता की भी खोज करती है, यानी कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए, ये मानकर चलिए आप अंदर अपने अंदर तलाश कीजिए इस बात की, आप जिस स्थिति में भी हो, चाहे वह स्थिति ज्ञान की हो, धन की हो, व्यवसाय की हो, समाज में पद की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान करके चलिए कि हर व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी एक रचनात्मक क्षमता है, क्रिएटिविटी है। हर कोई कुछ न कुछ क्रिएट कर सकता है, प्रकृति ने बनाया ही इस तरीके से है। और खासकर आप जब मनुष्य तो उसकी सर्वोत्तम कृति है, तो उसमें तो क्रिएटिविटी होगी ही होगी। लेकिन हमारी ये जो क्रिएटिविटी है ये गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, कहां गायब हो जाती है, यहां मैं दूसरे तत्वों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा अभी जो विषय है वो क्रिएटिविटी की तलाश करना नहीं है बल्कि संतोष कैसे क्रिएटिविटी का आधार है इसके बारे में जानकारी देना है। तो दोस्तों, जो हमारे अंदर असंतोष का भाव होता है, सच पूछिए तो जब असंतोष का भाव होता है, आप खुद अपने अंदर इसकी खोज कीजिए, इसकी जांच परख कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं, आप अपनी दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि असंतोष होता ही दूसरे की दुनिया में विचरण करने से है। हमारी अपनी दुनिया है, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे की दुनिया दिखाई देने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है, समझ में आने लगती है, तो ऐसा लगता है कि अरे उसकी दुनिया तो ऐसी है। चलिए ठीक है, उसकी दुनिया ऐसी है, यहां तक बात ठीक है, लेकिन बात गड़बड़ होनी वहां शुरू होती है जब हमें यह लगने लगता है कि मेरी दुनिया वैसी क्यों नहीं है, तो मेरी दुनिया भी वैसी होनी चाहिए। बस ये एक छोटी सी सोच आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर एक बीज की तरह हल्के से गिर जाती है और धीरे 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 पनपने लगती है। और पनप करके फिर उसकी जड़ें और उसकी शाखाएं और उसकी पत्तियां और उसके फल फूल हमारी चेतना पर बुरी तरह से छा जाते हैं। यूं कह लीजिए कि हमारी पूरी चेतना को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम दूसरे की दुनिया के गिरफ्त में आ गए हैं, तब मेरी अपनी दुनिया के पास जो क्रिएटिविटी का बीज है वो कैसे दिखाई देगा, उसे मैं कैसे तलाश कर सकूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए और इसका अनुभव आपको होगा ही। चलिए, आप तालाब के पास नहीं जा सकते, आप झील में नहीं जा सकते, आप एक बड़े से परात में पानी ले लीजिए और जिस दिन खूब चांदनी रात हो और चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहा हो, आप बकायदे उस परात को कुछ इस तरीके से रखिए जिसमें चांद की परछाई दिखाई दे। आप परात को रख दीजिए, थोड़ी देर तक वेट कीजिए और फिर देखिए कि जो चांद की परछाई है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा पानी को हिला दीजिए या पानी में छोटा सा कंकड़ डाल दीजिए ताकि पानी में वेव्स पैदा हो जाएं। अब आप उस चंद्रमा को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको ये तो आभास हो जाएगा कि चंद्रमा है, लेकिन वो विखंडित चंद्रमा होगा, जगह जगह से टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का चंद्रमा होगा। अगर मान लीजिए कि आपको चंद्रमा के सही स्वरूप के बारे में मालूम नहीं है कि चंद्रमा होता कैसा है और आप इसी तरह से हिले हुए जल में ही चंद्रमा को शुरू से ही देखते आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में चंद्रमा की कौन सी छवि बनेगी? चंद्रमा की यही छवि बनेगी कि यह तो इसी तरह से टूटा फूटा आड़ा तिरछा होता रहता है। चंद्रमा की सही छवि इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि वह सही छवि आपने हमने देखी ही नहीं है। तो अब ये जो चंद्रमा की छवि डिस्टॉर्टेड हुई है, जो विखंडित हुई है, जो विकृत हुई है, क्यों हुई है? सीधी सी बात है कि जब पानी स्थिर था, तो छवि बिल्कुल ज्यों की त्यों दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पानी अस्थिर हो गया है। पानी में असंतोष का भाव आ गया है, उसमें लहरें उठ रही हैं। वह शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो अब जो छवि बन रही है चंद्रमा की, स्वाभाविक है कि वो कटी फटी छवि बनेगी और हम उसे ही चंद्रमा मानने की भूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल यही बात ज्यों की त्यों हमारे मन के साथ भी होता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। जब हमारा मन बहुत शांत होता है, बहुत स्थिर होता है, तो जो कुछ भी हम बाहरी दुनिया में देखते हैं, समझते हैं और यहां तक कि सोचते हैं, वह बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, जैसे उसे देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी छवि हमारे मन पर सही रूप में पड़ रही है, हम उसके सही स्वरूप को देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा मन खराब होता है, उसमें विकार आता है, किसी भी वजह से उसमें हलचल आ जाती है, वैसे ही ये चीजें तो अभी भी ज्यों की त्यों हैं, दुनिया नहीं बदली है, दृश्य ज्यों के त्यों हैं, घटनाएं भी वही हैं, ग्रंथ भी वही हैं, जो ध्वनियां आप सुन रहे हैं वो सब कुछ वही है, बस एक ही चीज है जो वही नहीं रह गया है, और वह है हमारा मन, या समझ लीजिए कि मैं स्वयं। और जब मैं स्वयं वही नहीं रह गया हूं, तो सीधी सी बात है कि अब जो चीजें भी मेरी ओर आ रही हैं, वो उस तरह से आ ही नहीं पाएंगी जिस तरीके से वे वास्तव में हैं। दोस्तों, इसीलिए आप अक्सर पाएंगे कि जो असंतोष से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत जबरदस्त किस्म का शिकायती व्यक्तित्व बन जाता है। शिकायती व्यक्तित्व, उसको हर व्यक्ति से शिकायत होती है, हर स्थिति से शिकायत होती है, हर चीज से शिकायत होती है, भगवान तक से शिकायत होती है। आपने इस तरह के वाक्य सुने होंगे, हे भगवान तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, हे भगवान मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे, तुमने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा, हे भगवान तुमको तो पिता कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो। ऐसे बहुत से वाक्य आपने सुने होंगे। हम बस यहां जो भूल कर रहे हैं वो ये कि बाहर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब आप देखिए कि टीवी में आप क्या कहते हैं, रिमोट में एक बटन ही दबा करके चैनल बदल देते हैं, सारी चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। रेडियो में भी आप यही करते हैं कि थोड़ा सा दूसरा वो लगा देते हैं, तो पहले अभी गाना आ रहा था तो अब कुछ आ रहा है, इसके बाद फिर कुछ आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन। याद रखिए कि थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में थोड़े परिवर्तन नहीं लाता है, थोड़ा सा परिवर्तन, और यदि वह आंतरिक परिवर्तन हुआ तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। इस भूल में हमें नहीं रहना चाहिए कि अगर छोटी सी ही तो बात है यार, ये छोटी सी ही बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अंदर की सारी चीजें एक दूसरे से इतने जबरदस्त रूप से जुड़ी हुई हैं कि वो छोटी सी चीज ही महापरिवर्तन का कारण बन सकती है। और जैसे ही हमारे मन में असंतोष का भाव आता है, भले वो चाहे छोटा सा ही असंतोष क्यों ना हो, बहुत बड़े परिवर्तन की आप कह लीजिए कि संभावनाओं को हम जन्म दे देते हैं। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि चूंकि ये तो सीधे सीधे हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं, तो मैं जो कुछ भी आप सबसे चर्चा कर रहा हूं उन सब को आप व्यवहारिक स्तर पर आजमा करके देखें और अपने ही अंदर आजमा करके देखें, तब सही मायने में आप जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका सही और समुचित लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।